बाबा तूने बना के अपना, हमको महान बना दिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको
मन की तार बाबा से जुड़ी थी कि और कहीं से जुड़ी थी? मन की तार बाबा से अगर जुड़ी रहे तो सर्व शक्तियों से आत्मा संपन्न बन जाएगी। जो कुछ बाबा के पास है वो सब तार के माध्यम से मिलता जाएगा, है ना? तो मन की तार निरंतर जुड़ी रहे, टूटे नहीं, इतना ध्यान रहता है। जरा भी अगर लूज भी हो गई तो कनेक्शन ठीक नहीं होगा, प्राप्तियां नहीं हो सकेंगी। इसलिए आज बाबा की मुरली में एकाग्रता और एकांत विशेष इन दो बातों पर वरदान था। एकांत का अनुभव करना अर्थात एक के अंत में चले जाना, बीच बीच में समय निकाल करके एक की याद में समा जाना और मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाए, एकाग्र हो जाए। होती है कि सेवाओं में रहते हैं, कई कार्य होते हैं, मन और बुद्धि को एकाग्र करने में मेहनत लगती है। क्या अनुभव है रे का? होता है माताओं का? होता है? अगर नहीं होता है तो कुछ कारण होगा, क्योंकि बाबा ने तो हम सबको इतना सुंदर गोल्डन चांस दिया है। बाबा की इस वरदान भूमि पर, चरित्र भूमि पर, कर्म भूमि पर हम सभी रह रहे हैं, सेवाधारी हैं या स्थायी रूप से रहने वाले हैं। ऐसा सुंदर गोल्डन चांस किसको मिलता है? बिरला कोई होगा। इतने अच्छे स्थान पर बाबा ने ऊंची चोटी पर बिठाया है, किन बातों का विशेष ध्यान रखें जो सहज ही मन और बुद्धि एकाग्र हो जाए? बाबा ने इस साल हम सबको पुण्य की पूंजी जमा करने का विशेष इशारा दिया। हर प्रकार से जमा का खाता संपन्न हो तो सेवा करते आप सभी अनुभव करते हो कि जमा का खाता भरपूर होता जा रहा है, भरपूरता का अनुभव हो। कोई भी खाता खाली न रह जाए। चेक किया है सभी ने? पुरुषार्थ हम जो कर रहे हैं जितना समय हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, श्रीमत पर कदम रखते हैं, उतना हमारा पुरुषार्थ से श्रेष्ठ प्रालब्ध बनती जाती है। एक जन्म नहीं लेकिन 21 जन्मों की प्रालब्ध बनाने का संगम का ये समय है। बाबा कहते बैंक कभी ही खुलती है, संगम पर ही, फिर बंद हो जाएगी। तो पुरुषार्थ से हम सब ने इस बैंक में कितना जमा किया है, कितने जन्म का जमा किया है। कई बार बाबा कहते हैं 21 जन्म नहीं, 84 जन्म के लिए अभी नूंद सकते हो, अंतिम जन्म तक भी तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जितना इस समय ध्यान दो पुरुषार्थ पर, क्योंकि प्रालब्ध का आधार पुरुषार्थ है। अगर पुरुषार्थ में अलबेलापन है, पुरुषार्थ में आलस्य है, सुस्ती है, बहानेबाजी है, चाहे वो पुरुषार्थ का समय जो निश्चित है दिनचर्या के अनुसार, उसमें अलबेलापन है, अमृत वेले का योग है, पढ़ाई है, शाम का योग है, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल है, ये हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए बाबा ने भिन्न भिन्न विधियां बना के दी हैं। और अगर इन विधियों के प्रमाण हम सभी चल रहे हैं तो हमारा पुरुषार्थ अपने आप ठीक चलता रहता है और उसकी प्रालब्ध गुप्त रीति से जमा होती जाती है। लेकिन अगर पुरुषार्थ में जरा भी अलबेलापन है तो प्रालब्ध को अपने आप ही कम करते जाते हैं। तो इस जमा के खाते में सबसे पहले चेक करना है कि मेरा पुरुषार्थ ही यथार्थ है। ऐसे नहीं मैं तो पुरुषार्थी हूं, कोई गलती होती जाए और फिर कहो मैं क्या करूं, मैं तो पुरुषार्थी हूं, मैं चाहता नहीं हूं, हो गया। तो बाबा हम सबको पुरुषार्थ से प्रालब्ध बनाने की पहली प्रेरणा देते हैं। और दूसरा बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम युग पर इतनी प्राप्तियां मैं तुम बच्चों को कराता हूं, अखुट प्राप्तियां हो रही हैं, उन प्राप्तियों से संपन्न मैं आत्मा कहां तक संतुष्ट हूं और संतुष्ट रह करके सर्व आत्माओं को कहां तक संतुष्ट करता हूं। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का स्टॉक जमा हो जाता है। अगर कोई आत्माएं संतुष्ट नहीं रहती अपने आप से, सब कुछ प्राप्तियां हैं, भगवान के घर में इतना मिल रहा है, कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं है। सतयुग में देवताओं के आगे तो ठीक है, उनके लिए तो गाया हुआ है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। लेकिन अगर सचमुच इस जीवन में हम सभी देखें, संगम युग पर बाबा ने अपने बच्चों की हर मनोकामना पूरी की है, हर आवश्यकता पूरी की है, सब कुछ संपन्न बना दिया है, भरपूर कर दिया है, और ज्ञान धन दे करके आत्मा को इतना तृप्त कर दिया है। कितना धन है हम सबके पास पता है, धनवान है सभी, स्थूल धन की बात नहीं है। संगम युग का समय सबसे अमूल्य धन है। अगर कोई समय नष्ट कर रहा है इधर उधर की बातों में, व्यर्थ में, पर चिंतन पर दर्शन में, माना उसको अपने इस धन की कदर नहीं है। जितना चाहे उतना इस धन को बढ़ा सकता है। समय बहुत बड़ा धन है, संकल्प बहुत बड़ा धन है, शक्तियां श्वासें बहुत बड़ा धन है। और यज्ञ में जो हम सभी रह रहे हैं, इस यज्ञ में अगर हम इकोनॉमी से चलते हैं, इकोनॉमी समझते हैं यज्ञ में कैसे की जाती है, कैसे यज्ञ में इकोनॉमी की जाती है, कम से कम खर्च हो, लेकिन जमा का खाता तब बढ़ता है जब व्यर्थ को बचाया जाए। ठीक है, यूज हो रहा है, ठीक है, सफल हो रहा है, कार्य में लग रहा है, लेकिन जहां पर भी व्यर्थ जा रहा है, चाहे भोजन व्यर्थ जाता है, कई हैं खाएंगे थोड़ा फेंकेंगे बहुत, नहीं अच्छा लगेगा तो कहेंगे छोड़ो सब, थाली की थाली फेंक दो, इधर से उधर कर देंगे, इधर छोड़ देंगे, उधर कहीं भंडारा तो अकुट है ना, लेकिन उनका माइनस हो रहा है क्योंकि वो यज्ञ की चीजों का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अगर हम यज्ञ में रह करके बचत का खाता जमा करना चाहते हैं तो दान की आई हुई चीजें, ये सब दान में आई है ना, उनको ठीक तरह से प्रयोग किया जाए, जरा भी व्यर्थ न जाए। कहीं बल्ब जल रहा है, कहीं पंखा चल रहा है, कहीं पानी बह रहा है, अगर कोई आत्माएं यज्ञ के रक्षक हैं और अपना भाग्य बनाना चाहती हैं तो क्या करेंगी, जलने देंगी? नहीं, यहाँ पर बल्ब ऐसे ही चल रहा है, इसको बंद कर दो, बचत हो जाएगी। ऐसे ही पंखा चल रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, बंद कर दो। पानी ऐसे बहता जा रहा है, क्यों बहेगा, यज्ञ का बहुत अमूल्य है। वो एक एक चीज को बचाएंगे और उनका बचत का खाता बढ़ता जाए, ये इकोनॉमी है। इकोनॉमी ये नहीं है कंजूसी करना, खर्च नहीं करना। बाबा कहता है तो खर्च करो, लेकिन सेवा में खर्च करो, अपने प्रति सब खर्च नहीं कर लो, व्यर्थ नहीं कर दो। समय, शक्तियां, संकल्प, श्वास, जो कुछ है संगम युग पर हम सबके पास, वो यूज करके, बढ़ा करके, दान करके, सेवा में लगा करके बढ़ा लें, फ्राक दिली से लगाएं, लेकिन जहां व्यर्थ जा रहा है उस व्यर्थ को बचा लें। जरा भी हमारे द्वारा यज्ञ की एक पैसे की चीज भी व्यर्थ न जाए, इतना इकोनॉमी से चलना। और एक नाम ही, एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा का ही नाम हो, मेरा नहीं हो, ऐसे नहीं मैं सेवा करता हूं, मेरी प्रत्यक्षता हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मैंने बहुत अच्छा किया, तो बाबा कहता जहां पर मैं पना गया एक, वहां पर एक नामी नहीं रहे, अनेक नामी आ गए, हो गए। और एक नामी नहीं तो एक का नामी भी नहीं कर सकते। इसलिए संतुष्ट रह करके, संतुष्टता माना भरपूरता, ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं, जितना है उतने में संतुष्ट हूं, बाबा कहता ये संतुष्टता नहीं चाहिए। लेकिन सर्व प्राप्तियों से आत्मा संपन्न है, पहले संपन्न करो अपने आप को, फिर संतुष्ट रहो, भरपूर करो। कितना बाबा दे रहा है, अखुट दे रहा है, ज्ञान धन से अगर आत्मा भरपूर रहना जानती है तो उसके बाद उसके पास सब प्रकार के धन अपने आप आते हैं। लेकिन आत्मा ज्ञान धन से संपन्न बने पहले, उसको ऐसे समझे, ज्ञान धन व्यर्थ न जाए। और व्यर्थ पता कहाँ जाता है, छोटी छोटी समस्याओं में बहुत ज्यादा जाता है। अगर कोई विघ्न आ गया, अपने पुरुषार्थ में विघ्न आ गया, कोई के आगे आ गया और उसको सुलझाने में लग गए तो बहुत सी शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। दो, अपना भी समय व्यर्थ जाता है और दूसरी आत्माएं जो हमारे पे संकल्प चलाती हैं उनका भी समय व्यर्थ चला जाता है, इसलिए वो बोझ चढ़ जाता है। तो तीसरा जो खाता है वो है पुण्य का खाता, और पुण्य का खाता इसकी बहुत गहराई है। इस पर अगर कोई विचार करे ना, बहुत पुण्य के खाते की गहन फिलॉसफी है, गहरी, क्योंकि बाबा ने हम सबको पापों से तो बचा दिया, पाप कर्म से छूट गए, लेकिन पाप कर्म कई ऐसे गुप्त रीति से हो जाते हैं जिनका बोझ चढ़ता है। आज मैं आपको थोड़ी सी 5-6 बातें बताऊंगा, पाप कैसे होते हैं और पुण्य कैसे होते, पुण्य किसको कहा जाता है। वैसे दुनिया में मानते हैं अहिंसा पुण्य है, अहिंसा पुण्य है, और बाबा ने हम सबको डबल अहिंसक का टाइटल दिया है। संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं डबल अहिंसक बनती हैं। तो सबसे बड़ी हिंसा तो काम विकार की बाबा ने सुनाई है, जिसमें बाबा उसको टाइटल देते हैं काम कटारी, जिस हिंसा से तो हम सबको बाबा ने बचा दिया। कटारी कोई नहीं चला सकता है, पतित नहीं बन सकता है। लेकिन संकल्प भी अगर विकल्प का रूप ले लेते हैं, बहुत तूफान आते हैं, बहुत व्यर्थ चला जाता है शक्तियां एनर्जी, तो बाबा कहता है ये भी एक हिंसा है। इसलिए सबसे पहले आत्मा अगर पुण्य आत्मा बनना चाहती है, पुण्य का खाता जमा करना चाहती है, तो डबल अहिंसक स्वरूप में रहे। जो दुख देने की हिंसा है किसी के, किसी को दबाने की हिंसा है, किसी को परेशान करने की, वो क्रोध तो हम करेंगे नहीं जो दुनिया वाले कर रहे हैं। जैसे गुस्सा कर रहे हैं, हिंसक होकर के एक दूसरे को मार रहे हैं, खून कर रहे हैं, कितना हिंसक वातावरण दुनिया के अंदर है। समाचार कभी सुनो पढ़ो तो ऐसे लगता है कि जैसे मौत का बाजार गर्म है, जिधर देखो उधर अनेक प्रकार की आगजनी, अनेक प्रकार की हिंसा, और उसका कारण क्रोध, क्रोध की ज्वाला भड़क रही है। बाबा ने तो हम सबको बनाया है शीतल देवियां, टाइटल दिया था ना कल मुरली में, शीतल देव शीतल देवियां, छींटे डालो शीतलता के। लोग जल रहे हैं काम और क्रोध की अग्नि के अंदर, तो बाबा ने हम सबको पुण्य कर्म करना सिखलाया, माना डबल अहिंसक बना दिया। आपस में भी कभी तू तू मैं नहीं कर सकते, ऐसे नहीं चार बहनें एक साथ कमरे में रहती हैं और आपस में तू तू मैं हो जाए, भाई भी रहते हैं, कभी भी आपस में मन मुटाव न हो जाए, ध्यान रखना। कमरे में साथ रहते हैं ना, नहीं बनती है संस्कारों में, कोई को कहेंगे पंखा क्यों चला दिया, कोई कहेगा ये क्यों कर दिया, लाइट क्यों जला दिया, इधर क्यों चारपाई कर दी, यहाँ कपड़े क्यों रख दिए, थोड़ी छोटी बातें, संस्कारों का टक्कर शुरू हो जाता है और आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है, फिर आपस में वैर हो जाता है। बाबा कहता है तुम्हें खीर खंड रहना है और आपस में लून पानी, ये भी तो हिंसा है ना, आपस में नमक पानी बनना, खारा पानी होना, एक दूसरे से मन मुटाव करना, कुवचन बोलना, रफ डब बोल बोलना, मुख से ऐसे शब्द निकाल देना जो किसी की स्थिति बिगड़ जाए, तो ये क्या है, हिंसा है या नहीं? तो ध्यान रखना, बाबा के घर में हम पुण्य की कमाई जमा करने आए हैं, इसलिए कोई भी मुख की भी ताली नहीं बजनी चाहिए, मुख की ऐसी ताली न बजे जो एक दूसरे को दुख पहुंचाए आत्मा। तो अहिंसक कितना मैं बना हूं, बहुत गहरी परिभाषा है, इस पर मैं क्लास नहीं कराऊंगा, लेकिन इस पर विचार करेंगे कि यदि मैं अपने विवेक को भी दबाता हूं, समझते हैं बात, जो मेरा विवेक कहता है ये नहीं करना चाहिए, जो मेरा विवेक खाता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, यदि मैं फिर भी कर लेता हूं, सिर्फ संस्कार के बस, देखा देखी के बस, उसने किया इसलिए मैंने कर लिया, तो क्या होगा, ये विवेक को दबा दिया। तो विवेक को दबाना या गले को दबा देना बराबर हो गया ना? अगर हम अपने विवेक को, जो हमारा विवेक नहीं मानता है ये तो बाबा की श्रीमत की अवज्ञा है, नहीं करना चाहिए, और फिर भी मैं कर रहा हूँ परवश होकर के, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है, और हिंसा सबसे बड़ा पाप है। इसलिए पुण्य आत्मा जो है वो हिंसा नहीं कर सकती, दुख देने की हिंसा नहीं कर सकती है, और दुख लेने की भी हिंसा नहीं कर सकती। कोई ने दे दिया और मैंने ले लिया, मूड खराब हो गई, रोना आ गया, डिस्टर्ब हो गए, माइंड खराब हो गया, तो बाबा कहता है ये दुख लिया क्यों, ये श्रीमत का उल्लंघन नहीं है क्या? देने वाला दे दिया, तुमने क्यों लिया, तुमको अच्छा नहीं लगता छोड़ दो। तो इतना बाबा हम बच्चों को पुण्य कर्मों की फिलॉसफी सुनाता है। दूसरा पुण्य है, बोलो, सत्यता, सच बोलना और सत्य स्वरूप में रहना। अगर मैं आत्मा असत्य स्वरूप में रहती हूँ, स्वरूप तो बाबा ने सबको बताया ना कौन सा है, अपने आत्मिक स्वरूप में रहना, आत्मा होकर के देखना, आत्मा होकर के चलना, दैहिक दृष्टि से न्यारा हो जाना, देहभान से न्यारा रहना। सत्यता ये है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। अगर शरीर को देखते हैं, शरीर को देखकर बात करते हैं, शरीर पर दृष्टि जाती है, शरीर के प्रति चिंतन चलता है, तो इसको एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे ये व्यर्थ देखना ही इविल है। व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, देह के प्रति देखना, देह के प्रति चिंतन करना, देह के प्रति वर्णन करना, देह अभिमान में आकर के बातें करना, ये ही पाप है। इसलिए सत्यता ये है कि आत्मा को देखने का अभ्यास किया जाए, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहें, और जो हूँ जैसा हूँ बाबा के आगे साफ और सच्चा हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ, कथनी और करनी में अंतर नहीं है। अगर किसी की कथनी अलग है और करनी अलग है तो उसको सत्यवादी नहीं कहेंगे। सत्यता यही है, जो कहूँ वो करूँ, और करने कहने के पहले करके देखूँ। तो अगर मैं आत्मा दूसरों को कोई ज्ञान दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मैं उस पर कहाँ तक चलता हूँ, मैं उसका अभ्यास कहाँ तक करता हूँ, ये है सत्यता। तो सत्य स्वरूप में रहना ही पुण्य है और सत्य बोलना ही पुण्य है। इसलिए सत्यता को अच्छी तरह से गहराई में जाओ। सत्यता किसको कहा जाता है? सत्य बाबा है, कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा ही सत्य है। सत्य ही परमात्मा नहीं है, कई लोग तो कहते हैं सत्य ही परमात्मा है। अब सच्चाई कोई परमात्मा थोड़ी है, सच्चाई हमारे एक गुण है। एक गुण में बांध देना बाबा को लिमिट हो गई, हद में आ जाएगा। लेकिन एक गुण नहीं हो तो सर्व गुणों का सिंधु है, सर्व गुणों का सागर। लेकिन परमात्मा ही सत्य है, उसके अंदर सत्यता है, और वो सत्य स्वरूप में सदा रहता है, क्योंकि देह अभिमान में नहीं आता। ये सत्यता कि मैं आत्मा जितना सत्य स्वरूप में आत्मिक स्थिति में स्थित रहता हूँ, आत्मा को देखने का अभ्यास करता हूँ, उतना मेरे अंदर सच्चाई आती जाती है। तीसरा एक बहुत सूक्ष्म पाप जो कभी कभी अलबेलेपन में बहुत होता है, कौन सा? चोरी करना, छिपाना। छोटी छोटी चीजें आवश्यकता की हैं, समझ में आता है, आवश्यक हैं, लेकिन कई बार वो नेचर बनी हुई होती है। कोई ने कोई चीज रखी और हमको अच्छी लगी, हमने छिपा दी, हमारे को जरूरत है, हमने उठा लिया। लेकिन जिसकी है, जिसने रखी है, जो यूज कर रहा है, उसके संकल्प जो चले, वो आपके पाप के खाते में गए। ये बहुत गहरी फिलॉसफी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझ के चलना। क्योंकि मान लो आज आपने साबुन की चक्की एक रख दी एक स्थान पर और दूसरे ने आकर के उसको उठा लिया है, बहुत छोटी सी बात। तो एक छोटी सी भूल, छोटी सी गलती पुण्य कर्म से वंचित कर देती है, पाप का खाता बढ़ा देती है। इसलिए हम सभी को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। संगठन है ना, जहाँ पर संगठन होता है वहाँ छोटी छोटी ऐसी भूलें होती रहती हैं, पाप हो जाते हैं। हम समझते हैं तो है ना, चलता है, कौन देख रहा है। लेकिन बाबा कहता है अगर मैंने कोई ऐसा कर्म किया और दूसरी आत्माओं के नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प चल गए, तो पाप हुआ या पुण्य हुआ? इसलिए कभी भी ऐसे छोटी मोटी चीजों की भी कोई चीज रखी बिना पूछे खा लिया, कहेंगे तो सबके लिए रखी है ना। लेकिन जो उसका जवाबदार है, जो ये डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, उससे पूछ करके लेना एक मर्यादा है। अगर कोई चीज हमें आवश्यकता है और नहीं मिल रही है तो डिपार्टमेंट वालों को बोल सकते हैं कि भाई ये हमें चाहिए। लेकिन छिपा लेना या चोरी कर लेना या इधर उधर हेरा फेरी कर देना जिससे अन्य आत्माओं के संकल्प चल जाएं, ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए इतना ध्यान रख करके पुण्य कर्मों का खाता जमा करना है। और पुण्य का खाता तभी जमा होता है जब हम हर आत्मा को दिल से निस्वार्थ भाव से सुख देते हैं। निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ नहीं है हमारा। अगर जरा भी कोई स्वार्थ रख करके चलता है तो सुख नहीं पहुंचता है। इसलिए पुण्य है निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य, मर्यादाओं में चलते हुए पुण्य का खाता जमा करना। मर्यादाएं उल्लंघन हो रही है, छोटी छोटी मर्यादाएं हैं। मान लो आप फुल ड्रेस में नहीं रहते हो, भाई लोग अपने छोटी ड्रेस में रहते हैं, दूसरे देखते हैं, संकल्प चलते हैं, ध्यान रखो, ये भी एक ईश्वरीय मर्यादा है। लौकिक दुनिया में हम नहीं रह रहे हैं, हम एक आश्रम के अंदर रह रहे हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर। इसलिए हमको फुल मर्यादित ड्रेस में रहना है। ड्रेस भी ऐसी नहीं पहनना जो दूसरे के कोई नेगेटिव संकल्प चले, व्यर्थ संकल्प चल जाए। तो एक बहुत छोटी छोटी ईश्वरीय मर्यादाओं के अंतर्गत यदि आत्मा चलती है तो पुण्य कर्म का खाता जमा होता जाता है। और पुण्य कर्म अगर खाते में हमारे जमा हो रहे हैं तो उसकी सबसे अच्छी निशानी होगी कौन सी? खुशी और हल्कापन। खुशी भी होगी और आत्मा हल्की एकदम लाइट होती जाएगी। अगर पाप है तो पाप को ऐसे भी कहा जाता है बोझ है। अगर पाप चढ़ते जा रहे हैं तो बोझ आत्मा के ऊपर आता जा रहा है, और बोझ आता जा रहा हो तो उसकी निशानी है भारीपन। लेकिन जब योग में बैठेगा सो जाएगा, मुरली में बैठेगा बुद्धि भटकती रहेगी। कोई भी अच्छा कर्म पाप किया हुआ आत्मा करने नहीं देते, उसको करने नहीं देगी वो। अगर पाप कोई कर्म हो गए हैं तो माया उससे फिर ऐसे कर्म कराती है जो अच्छाई की तरफ उसकी रुचि खत्म हो जाती है, अंदर का उमंग खत्म हो जाता है। पढ़ाई में ध्यान नहीं, योग नहीं लगता, इसलिए योग में आने की दिल नहीं होती, सच्चे अच्छे संग में जाने की दिल नहीं होती, ब्रह्मा भोजन भी कई बार अच्छा नहीं लगता, मन भारी भारी, भारीपन है माना उदास, निराश, थका हुआ, जैसे कोई उसके अंदर उमंग ही नहीं, उत्साह नहीं। तो भारी वाली आत्माओं की क्वालिटी को अगर आप चेक करो, कई बार दादी जानकी जब मुरली चुनाती है कहती है ये भारीपन है, आंख बंद हो रही है, बार बार झुटका आ रहा है, मुरली इतनी उमंग उत्साह की चल रही, क्लास ऐसा हो रहा है जो सब डांस करने लगे, और सामने वाली आत्मा अगर ऐसे करे तो नमाज पढ़ रही हो तो है? क्या कहेंगे? भारी है। और भारी है तो जरूर कुछ न कुछ अवज्ञाएं की हैं। अगर वो आज्ञाकारी होकर के रही है तो आज्ञाकारी माना हल्का, और अवज्ञाकारी माना, एक बहुत अच्छा स्लोगन था, परसों मैं क्लास करा रहा था, उसमें बाबा ने कहा कि माया की जो चतुराई है, उस माया की चतुराई से परे रहने वाले बाप को प्रिय लगते हैं। स्लोगन था ये, माया की चतुराई है कि किसी न किसी तरह से उसको भारी बना दो, जो उसको मुरली अच्छी न लगे, जो उसको योग अच्छा न लगे, उसको संग अच्छा न लगे, यज्ञ अच्छा न लगे, ब्रह्मा भोजन अच्छा न लगे, सबसे जैसे क्या फंस गया करके, थका हुआ, उदास, निराश, ये माया की चतुराई है जिससे उसके कोई भी प्रकार के पुण्य के खाते जमा न हो जाए, काट दे उसको। तो चेक करना ये, कहीं भी माया की चतुराई ऐसी सूक्ष्म अवज्ञाएं तो नहीं करा रही है जो बाबा का प्रिय बनने के बजाय, प्रिय नहीं होंगे तो कैसे योग लगेगा? अगर बाबा से प्यार नहीं है या बाबा का प्यार मेरे ऊपर नहीं है तो मेरा योग लगेगा क्या? अगर मैं आज्ञाकारी होकर के चल रहा हूँ, छोटी छोटी बातों की अवज्ञा नहीं, कही कहते मैं क्रोध थोड़ी करता हूँ, मैं गुस्से में थोड़ी बोला, लेकिन रोब तो है, रोब के बिना काम कैसे चलेगा, अथॉरिटी तो रखनी पड़ेगी। शीतलता नहीं, नम्रता नहीं, अंदर से जोश है तो बाबा क्या कहेगा? ये भी एक प्रकार की अवज्ञा है। इतनी आत्मा नम्रचित बन जाए, इतनी निर्माण चित बन जाए, इतनी शीतल बन जाए, जो शीतल काया वाला योगी सबका प्रिय बन जाए। तो ध्यान देना है कि कोई भी छोटी मोटी अवज्ञाएं, अलबेलेपन से, आलस्य से, बहानेबाजी से, किसी भी प्रकार की मर्यादा के उल्लंघन से, श्रीमत की अवज्ञा से बोझ न बन जाए, चतुराई माया की न दिखाई दे। माया तो बहुत चतुर है ना, जिसमें हम पहचान लेते। एक बार बाबा ने कहा था कि जिस रूप में तुम माया को पहचान लोगे ना, उस रूप में वो नहीं आएगी, वो भी समझदार है, वो भी होशियार है, और नया रूप लेकर के आएगी जिसमें पहचान ही न सके, ये भी कोई माया है। देहमान दिलाएगी अंदर अंदर, बॉडी कॉन्शियस में ले आएगी, बहुत नए नए रूप से आएगी, कहेंगे गुस्सा नहीं है लेकिन क्या करूं, आंख तो दिखानी पड़ती है, लोभ नहीं है लेकिन संग्रह वृत्ति है, जो चीज मिल गई इकट्ठा करते जाए। दान की हुई चीजें बाबा के घर में आई और हम अपने लिए इकट्ठी करते जाएं, कई लोग अपना बैंक बैलेंस बनाते जाते हैं, बाबा कहता है ये भी बहुत बड़ा पाप है। यदि मैं आत्मा दान की, क्योंकि मेरी अपनी कमाई तो है नहीं, मैं तो यज्ञ में कोई पैसा लेकर के तो सेवा नहीं दे रहा हूं, और अगर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, बैंक में पैसा बढ़ता जा रहा, कहां से आया? दान किए हुए पैसे को कहीं न कहीं से हमने छिपाया और उसके आधार से हमने बैंक बना दी, पैसा जमा करते गए। अब वो पाप जो बना, दान की हुई वस्तु को संग्रह कर लेना, अपने प्रति यूज करना, अधिक लगाना कार्य में, एक बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है। और ऐसा बोझ यदि आत्मा पर चढ़ रहा है तो उसको न खुशी रहेगी, न हल्कापन रहेगा, न योग लगेगा, न ब्राह्मण जीवन की मौज का अनुभव। तो मैं एक बार बाबा की मुरलियों से, बाबा कई बार कहते हैं ना, संगम युग मौज मनाने का युग है, मूंझने वाला नहीं, उलझने वाला नहीं, लेकिन मौज कौन आत्माएं मना सकती है, उस पर एक बार पॉइंट्स निकाले थे। मौज कौन मना सकता, क्योंकि मूंझने की कई तरीके, कई रास्ते हैं मुझाने वाले, बहुत जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं उलझ जाएगा, मूंझ जाएगा, भटक गया तो मूंझ जाएगा, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा होता है, वैसा होता, अनेक प्रश्नों में उलझ जाएगा, एक उलझ जाएगा, मूंझ जाएगा, भटक जाएगा। तो बाबा कहता है कि संगम युग मौज का युग है, मौज में रहते हो, और मौज में कौन रह सकता है, कौन रह सकता है मौज में? वही रह सकता है जो बाबा की श्रीमत पर कदम रखता है। अगर श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स कर दी तो उलझ जाएगा, उलझन है। अगर कहीं भी उलझन है, कहीं भी मूंझ का अनुभव होता है, तो चेक करना यहां पर मेरी मत या किसी दूसरे की मत ऐड जरूर हो गई। श्रीमत में हमने कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती की है, इसलिए उलझन है। नहीं तो अगर मन और बुद्धि स्वच्छ है, निर्मल है, तो बाबा की टचिंग है, बाबा अनेक प्रकार के इशारे देता है, हम कैच कर सकते हैं। और जिसके पास टचिंग और कैचिंग, ये दो पावर, दो शक्तियां हैं, उसके लिए कहीं कोई उलझन नहीं रह सकते। उनको बहुत स्पष्ट रास्ता दिखाई देता है, जहां स्पष्टता नहीं है वहां उलझन है। माना कहीं आपको दिखाई नहीं दे, मान लो आपको लगे लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, क्या होगा? मूंझ होगी ना, किधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, उलझन हो जाएगी। तो मूंझना, उलझ जाना, मुरझा जाना, उदास हो जाना, ये सब निशानियां हैं क्या? कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की अवज्ञा, कोई न कोई प्रकार से श्रीमत का उल्लंघन। इसलिए हम सभी श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलें। ईश्वरीय मर्यादाएं क्या क्या बाबा ने दी हैं, उनको जरूर नोट करो, हर एक के पास लिस्ट होनी चाहिए, ये ईश्वरीय मर्यादा है, ये नियम है, इस पर मुझे चलना है, इसमें कहीं पर भी कोई की मत ऐड न हो जाए। तो बहुत प्रकार से बहानेबाजी करा के माया उसमें अपनी मत ऐड करा देती है। तो हम सभी बाबा के बच्चों को पाप और पुण्य कर्मों की फिलासफी को समझ करके, कर्मों की गहन गति को समझ करके, बाबा के घर में हम भाग्य बनाने के लिए आए हैं। सेवा करना माना भाग्य बनना, और एक तरफ कोई सेवा करते करते भाग्य बनाए और दूसरी तरफ सूक्ष्म में कोई कोई पाप चढ़ रहे हो, अवज्ञाएं हो रही हो, तो क्या होगा? बैलेंस बराबर हो जाएगा या निल हो जाएगा? फिर खुशी नहीं रहेगी, फिर लगेगा गए तो सेवा करने थे, जैसे थे वैसे ही हैं, कोई उन्नति नहीं हुई, कोई प्रगति नहीं हुई, कुछ आगे नहीं बढ़े, कारण तो कुछ होंगे ना। तो चेक करना कि आगे बढ़ रहे हैं हम, हर कदम में लगता है कि सचमुच भगवान के घर में ये भाग्य मुझे मिला है, भाग्य बनाने का, सेवा द्वारा, श्रेष्ठ चिंतन द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनता है। इसलिए एक बहुत अच्छा गीत है, चिंतन की धारा बदल दो। जो चिंतन है ना हमारा, जो कभी कभी ऐसा चल जाता है जो पर चिंतन का रूप ले लेता है, पर दर्शन का रूप ले लेता है, बहुत बहाव उसका व्यर्थ की तरफ चला जाता है, बहुत सारी शक्तियां व्यर्थ देखने सुनने और बोलने से नष्ट होती हैं। इसलिए अगर हम उस चिंतन को देखें और चेक करके बदल दें, हमारा सुमिरन अच्छा हो जाएगा। चिंतन चेंज होते ही सुमिरन में बदल जाएगा, बाबा की अच्छी अच्छी स्मृतियां आएंगी, और स्मृतियां आ गई तो फिर से वो खुशी, वो हल्कापन, वो भाग्य का, मौजों का अनुभव होने लगे। इसलिए चिंतन को पहले चेक करो, बाबा का ज्ञान का चिंतन है, स्व का चिंतन है, शुभ चिंतन है या व्यर्थ तौर पर चिंतन चलता है। और अगर चलता है तो उसकी धारा जो है उसको बदलो, चेंज करो, उसको स्टॉप करो कि नहीं, ये नहीं मुझे सोचना, ये चिंतन के लिए बाबा ने मना किया है। और चिंतन चेंज होते ही आप देखेंगे स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि चिंतन से सुमिरन बनेगा, सुमिरन से स्मृति बने से, और स्मृति से स्थिति बन जाएगी। तो हम सब अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए बाबा के घर में आए हैं, और श्रेष्ठ स्थिति का जो आधार है वो चिंतन है, फिर कर्म है, फिर बोल है। तो पहले हम अपने चिंतन को चेंज करें, फिर अपने बोल पर पहरा दें, कोई ऐसा बोल मुख से न निकले जो किसी भी आत्मा की स्थिति को नीचे ले, डाउन कर दे, ये भी पाप हो जाए, हिंसा हो जाएगी। तो ऐसा अगर हमारा अपने कर्मों पर ध्यान है, मैं समझता हूँ कि हमारी ये जीवन बहुत बहुत मौजों के जीवन है। संगम युग पर अगर कोई आत्मा मुझ जाए, मौज का अनुभव न करे, तो भी उसने संगम युग का फायदा नहीं लिया। भगवान मिला और फिर भी दुनिया की तरह उलझा हुआ है, मूंझा हुआ है, तो भगवान के मिलने का फायदा क्या है? इतने ऊंचे ज्ञान प्राप्त करने का लाभ क्या? इतना ऊंचा जीवन हमने बनाया और फिर भी हम मूंझे हुए रहे, उलझन में रहे, खुशी का अनुभव न हो, उमंग उत्साह न हो, तो इस ब्राह्मण जीवन का फायदा क्या? तो सभी चेक करना कि सचमुच मैं बाबा का बच्चा बन करके, बाबा का बच्चा, भगवान का बच्चा, उसकी पालना में आकर के, उसके द्वारा पढ़ाई करके, उसकी श्रेष्ठ मत लेकर के, फिर कहीं उलझ तो नहीं गया हूँ, कहीं फंस तो नहीं गया हूँ, कहीं चिंतन हमारा व्यर्थ और नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी चेकिंग होगी ना, इतना अच्छा रिकॉर्ड होगा, इतना अच्छा चार्ट होगा, तो मन सहज एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि हमारा योग जो है वो सहज योग है, न कि सहन योग है, मुश्किल वाला योग नहीं है। लेकिन क्या करें, मन भटक जाता है, मुश्किल और मेहनत में डाल देता है। क्या करूं, बैठता हूं ना आधा घंटा, दो मिनट भी मजा नहीं है, इधर भाग गया, उधर भाग गया, क्यों भाग गया? कुछ तो व्यर्थ देखा, कुछ सोचा, कुछ चिंतन किया, इसलिए भाग गया। अगर अच्छा अच्छा चिंतन करो, अच्छे अच्छे विचारों में रमण करो, अच्छा भोजन मन को दो, तो जैसा उसको कहोगे वैसा करेगा। तो श्रेष्ठ चिंतन मन को देना, ये भी एक कला चाहिए, ये भी एक कला है, अच्छा चिंतन मन को दिया जाए। और इसलिए बाबा हमको इतने वरदान देता है, इतना स्लोगन सुनाता है, इतनी मुरली सुनाता है, कितनी अच्छी अच्छी बातें, कई बार मुरलियों में सुनो कितना नशा चढ़ता है। आज बाबा ने क्या कहा, बच्चे सब कुछ इंश्योर्ड कर दो, मैं ही ट्रस्टी हूँ, मैं ही इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, इंश्योर करो तन मन धन समय श्वास जो तुम्हारे पास है, 21 जन्मों के लिए मैं तुमको माला माल बना दूंगा। एक रुपया अगर गरीब हो, एक रुपया लगाते हो, तो मैं तुमको महल दे दूंगा, मैं इंश्योर करने आया हूँ। गरीब एक रुपया दे करके महल ले रहा है, और हम बाबा के घर में रह करके उस एक रुपये को अगर व्यर्थ कर रहे हैं तो अपने महल गंवा रहे हैं। विचार करना पड़ेगा ना, मानो एक रुपया कोई ने दान दिया, उससे भोजन बना, आपकी थाली में आया, और वो आप जाकर के कहीं कचड़े के डब्बे में डाल दिया, जाके व्यर्थ गंवा दिया, इधर उधर रख दिया, सड़ा दिया। अब आम के ट्रक से ट्रक आ रहे हैं, आम आ रहे हैं, आपको मिले, आपने खाए भी नहीं और सड़ा दिए, वो चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? नहीं खाना है तो नहीं लो, किसने कहा जबरदस्ती है क्या? अलमारी में सड़ते रहते हैं, पड़े रहते हैं, खाया नहीं, सड़ गए, दान भी नहीं किया, चलो दूसरे को दे दो, सफल कर दो। बहुत छोटी छोटी बातें कि एक रुपया कोई दे करके अपना भाग्य बना रहा है और कोई उस भाग्य को गंवा रहा है। तो हम सभी अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे इन बातों पर, तो बाबा के यज्ञ में रह करके हर कदम में हमारी कमाई भी है और हर कदम में हिसाब का हिसाब भी है। तो सभी कमाई जमा करें ना सेवाधारी, ऐसे नहीं सेवा कर रहे हैं, ठीक है हम तो अच्छे हैं, तो सेवा करते हुए पुण्य का खाता जमा करते चलो। जितना स्टॉक पुण्य का होगा उसकी निशानी हल्कापन और खुशी, उमंग और उत्साह, नशा बहुत अच्छा एकदम लहर होगी, बहुत मजे मजे की जीवन, पुण्य में हो रहा है ना हमारा। पुण्य माना क्या होता है, पुण्य की पूंजी मानी जाती है। तो अगर पुण्य जमा हो रहा है तो बहुत मौज की जीवन का अनुभव। ठीक है, ओम शांति।